संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम कल पेज नंबर 398 और गाथा नंबर 276-77 की आत्मख्याति टीका। कल इन गाथाओं को अपन ने आरंभ किया था और मैं समझ रहा था कि टीका काफी कठिन है, लेकिन मैंने स्वयं घर में जाकर इसे पढ़ा और इसको भी पढ़ा साथ में, तो मुझे लगा कि जितना कठिन मैं समझ रहा हूं उतनी कठिन है नहीं। यदि आप लोगों ने भी बहुत धैर्य और शांति से इसका स्वाध्याय किया होगा तो आपकी समझ में भी वो गारंटी से आ गई होगी। फिर भी मैं तो उसकी चर्चा करूंगा ही, लेकिन वो कर्तृत्व का उतना जो बोझा माथे से है ना, क्या कि भाई आई समझ में नहीं आती, क्या करें कैसे समझाएं, ऐसा कुछ है नहीं। ये आत्मख्याति टीका अपन आरंभ करते हैं। ज्ञान का आश्रय होने से आचारंग आदि शब्द श्रुत माने शास्त्र ज्ञान है। दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नव पदार्थ दर्शन है। चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं, यह व्यवहार नय का कथन है। इन पंक्तियों में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि इसमें ये नहीं लिखा कि आचार आदि शास्त्रों का ज्ञान वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है, बल्कि आचार आदि शास्त्रों को ही सम्यक ज्ञान कहा, जड़ शास्त्रों को। और दूसरे जीवादि के सिद्धांत को सम्यक दर्शन नहीं कहा, नौ जीवादि तत्वों को ही, व्यवहार जो तत्व हैं उनको ही सम्यक दर्शन कहा। और चारित्र में भी छह काय के जीवों की रक्षा के भाव को चारित्र नहीं कहा व्यवहार से, पर छह काय के जीव इनको ही व्यवहार चारित्र कहा। अटपटा नहीं लगता है आपको? पर आप देखो उसमें ध्यान से पढ़ो, जो मैंने पढ़ा है अभी उसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये बात उसमें है। अब आपने घर पर पढ़ा होगा तो आपका ध्यान इस बात पर गया कि नहीं गया मुझे पता नहीं है, लेकिन अब तो गया जाना चाहिए ना। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वे कि छह काय के जीव व्यवहार चारित्र हो सकते हैं? क्या आगम सिर्फ सूत्र हमेशा की गाथाओं का ज्ञान नहीं, गाथाएं ये समय ज्ञान हो सकती हैं? और नौ तत्वों का सिद्धांत नहीं, नौ ही तत्व ये व्यवहार समादर्शन हो सकते हैं या नहीं? तो ऐसा क्यों कहा? कोई टीका में वो उन्होंने एक शब्द डाल दिया ना, अधिक ध्यान ज्ञान का आश्रय होने से, सिद्धांत का आश्रय होने से और चारित्र का आश्रय होने से। यदि ऐसा ही होता कि सात तत्व के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते और आगम ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते और छह काय के जीवों की रक्षा के भाव को व्यवहार चारित्र कहते तो उनका आश्रय होने से कहने की क्या जरूरत थी? है पता भी लिखा इनके जो आश्रय हैं, मतलब ये शास्त्र जो है ना, ये समय सार, ये सम्यक ज्ञान है कह रहे हैं। क्योंकि ये सम्यक ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का आश्रय है। माने इनका हम आश्रय लेंगे, इन्हें पढ़ेंगे तो हमें जो ज्ञान होगा वो व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो आश्रय से लिखने की वजह से वो इनके ज्ञान को नहीं कहा। ऐसे ही जो सात तत्व जनागम में कहे गए हैं उनके सिद्धांत को नहीं उनको कहा, क्योंकि उनका आश्रय लेने से लिखा, आश्रय होने से लिखा ना, ज्ञान का आश्रय होने से आतारंगादि शब्द श्रुत ज्ञान है, और दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नव पदार्थ दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं, यह व्यवहार नय का कथन है। यदि इस बात पर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो आगे जो वो समझाने वाले हैं तर्क और युक्ति से, तो वो भी आपकी समझ में नहीं आएगी। क्या वो भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। देखो एक तो यही है, आचार आदि लिखा ना, आचार आदि, तो आचार आदि में हमको आचरण की बात समझ में आती है, तो समझते हैं ये चारित्र का बोल होगा, ये तो ज्ञान का बोल है। ये आचार आदि का मतलब आचार अंग आदि, जो 12 अंग है ना, उनने आचार आचार अंग आचार अंग तो अंग नहीं कहा, क्योंकि ये क्या है कि ये 12 अंग हैं, जरूरत नहीं है कि हम जीव जीव अजीव आश्रय बंध तत्व ऐसा बोलते ना, तो ऐसा जीव तत्व अजीव तत्व आश्रय तत्व संवर तत्व ऐसा बोलते क्या, हर एक में तत्व कहां लगाते हैं, तत्व सात प्रकार के होते हैं, यहां लग गया ना तत्व, फिर जीव अजीव आश्रय बंध समझ जाए इतना पर्याप्त है। तो 12 अंग इस प्रकार हैं, तो अंग तो यहां लग गया ना, तो आचार सूत्र सूत्र कृत ऐसा अटपटा तो नहीं है ना, ये तो आचार अंग का उनने अकेला आचार लिखा है? क्यों, तो हमको वो दिखने लग गया कि आचरण दिखने लग गया, और आचार लिखा होता तो फिर तो हमारा आचार मरब्बा हो जाता। अंग्रेजी में लिखते ना तो अचार और आचार एक सही लिखा जाता है। अब तो अंग्रेजी में कुछ प्रयोग हुए हैं, आपको मालूम है भाई जी, यदि बड़ा आ लिखना हो तो दो ये लिखते हैं, क्योंकि एक ए लगाने से तो छोटा आ भी होता है, तो छोटा है कि बड़ा है, और कुछ ऐसे निशान बने हैं कि ऊपर वो निशान लगाए जाते हैं जिससे ये पता लगता है कि इसे छोटा हाथ कहना कि बड़ा हाथ कहना। खैर मैं अभी भाषा की विशेष बातें नहीं बताऊंगा, और अंग्रेजी की तो कम से कम नहीं बताऊंगा। अब एक बात ध्यान में आई ना, तो ये क्यों कहा, अब फिर एक दफे ढाई पंक्तियां पढ़ लेते हैं तो आपको उसका ख्याल में आएगा। ज्ञान का आश्रय होने से आचारांगादि शब्द श्रुत ज्ञान है, ये तो आचारादि ही लिखते, संस्कृत में तो आचारादि ही है, लेकिन मैं लोग भ्रम में न पढ़े इसलिए मैंने हिंदी अनुवाद करते वक्त वो अंग शब्द लगा दिया है बुद्धिपूर्वक, संस्कृत में तो यही है ना आचारादि शब्द श्रुत लिखा क्या नहीं लिखा, तो उसका हिंदी अनुवाद तो इतनी पर्याप्त था ना, क्यों आचार आदि लिखने पर्याप्त था, वो सही था अनुवाद, अनुवाद में कहां गलती थी, है ना। आचारांग आदि शब्द श्रुत और कोष्टक में शास्त्र लिखा, शब्द श्रुत माने शास्त्र, ज्ञान है दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नव तत्व नव पदार्थ दर्शन है, पदार्थ का सिद्धांत नहीं है ना, और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं, यह व्यवहार नय का कथन है। आप इस भ्रम में नहीं रहना कि आपकी समझ में नहीं आया और मेरी समझ में आ गया। पिछले कोई मैं बहुत महान हूं, ये तो गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव की समझ में आ गया, उसे हमने उसे पढ़कर हमारी समझ में आ गया। यदि हमारी महिमा करनी हो तो एक ये लिखो, कहो कि आपने भी वो गुरुदेव को पढ़ा और फिर भी आपको गुरुदेव की महिमा नहीं आई, ये कहना। देखो इसमें लिखा है, इसमें हमने लिखा है, लेकिन अभी इसे कौन पढ़ता है, क्या देख कर, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। देखो पेज नंबर निकालो आपके पास हो तो, ये बताना चाहता हूं मैं। इसमें गुरुदेव का कोटेशन है, उसमें ये बात लिखी है, छाछठ पे है, गुरुदेव का कोटेशन है, ये बता रहे हैं, लेकिन वो गुरुदेव का कहां लिखा है मैं तो वो पूछ रहा हूं। 66 पे अरशद के ऊपर होगा। हाँ देखो, यहां आचारांग आदि शब्द से वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत दिगंबर जैन दर्शन के आचारांग आदि शास्त्रों को निमित्त रूप से लिया गया है। कहा गया है कि आचार आदि शास्त्रों का ज्ञान, इसमें तो ज्ञान ले लिया, शब्द सूत्र दे कहां है, इसने ऐसा ही प्रश्न उत्तर किया है क्या कि इसको ज्ञान क्यों नहीं लिया। गुरुदेव ने ऐसा प्रश्न उत्तर किया है, पढ़ लेना शांति से, अभी अपने समय खराब नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि वो आश्रय है ना, इसलिए नहीं किया, जो मैंने जवाब दिया वो उनने दिया है ना, नीचे है ना, देखे। हाँ देखो पंक्ति में कहा आचारांग आदि शब्द श्रुत ज्ञान को व्यवहार, ज्ञान को व्यवहार और आत्मज्ञान को निश्चय कहने का तात्पर्य यह है कि आचारांग आदि व्यवहार ज्ञान में शब्द श्रुत निमित्त है, तो उस आचारांग आदि में शब्द श्रुत जानने में आया पर आत्मा जानने में नहीं आया, इस कारण से व्यवहार कहा है ना। पढ़ लेना, मैंने बता दी बात तो आपको ख्याल में आ जाएगी, और उसे नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात परम सत्य है, ये तो आपके ख्याल में आई गई, क्योंकि वो आश्रय वाली बात कह दी तो फिर उसमें ज्ञान और दर्शन और ये कहने की जरूरत नहीं थी। अब आगे पढ़ते हैं, ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है। देखो शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, नहीं यहां भी वही भाषा है। अब तो जल्दी आ जाएगी ना प्रवीण, जो जैसी भाषा ऊपर है ना वैसी नीचे है, और दर्शन का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही चारित्र है। मन शुद्धात्मा में रमण करना चारित्र है ऐसा नहीं लिखा, शुद्धात्मा चारित्र है, शुद्धात्मा को जानना यो ज्ञान है ऐसा नहीं लिखा, शुद्धात्मा का सिद्धांत वो दर्शन है ऐसा नहीं लिखा, बल्कि शुद्धात्मा ही दर्शन है, शुद्धात्मा ही ज्ञान है और शुद्धात्मा ही और वो आश्रय होने से है। ये पांच पंक्तियां हो गई है ना, और इसमें ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। इनमें आचारांग आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व अनेकांतिक है, अनेकांतिक हेत्वाभास है, व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है। जो ये पंक्ति है ऊपर, अब संस्कृत में देखें तो यहां लिखा है तत्र आचारादीनाम ज्ञानादि आश्रयत्व अनेकांतत्वात् व्यवहार नया प्रतिषिध्या। तो उसमें अनेकांतिक हेत्वाभास है, विचार नामक दोष है ऐसा नहीं है, लेकिन अपन ने लिखा है क्योंकि इसमें बहुत भ्रम होने की संभावना थी, क्योंकि हमारा धन अनेकांतिक इस पर जाता ही नहीं होता, अनेकांत 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 हो गया ना, अनेकांत खत्म, और हम उसका अर्थ अनेकांत ही समझ लेते हैं, समझ रहे ना। और यदि चला भी जाए राजेंद्र भैया, तो हमें कहां पता है कि न्याय शास्त्र में एक अनेकांतिक नामक दोष होता है। अबे जी हमने 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था क्या परीक्षामुख सूत्र है, वो पहली क्लास पास थे तब पढ़ा था, तो हमारे गांव में स्कूल ही नहीं था, दूसरे गांव में जाते थे तो वहां पर पहले अलग दे और एक ऐसी क्लासें चलती थी, एक में पास हुए फिर विद्यालय में चले गए, तो वहां उन्होंने परीक्षामुख पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं एक पास था, बड़े ज्यादा 2 पास थे बस, तो वहां जाके एक साथ ही हो गए, समझ में ना। तो हमको तो तब के ही याद है अनेकांत, हाँ फिर जब मौका आया ना तो महाविद्यालय खुला तो 3-4 बैचों को मैंने जो स्वयं पढ़ाया परीक्षा मुख वगैरह, तो तब उस वक्त थोड़ा पढ़ाने का मौका मिला, पहले तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिला, फिर भी मैं पूछ वालों को पकड़ पकड़ करके पढ़ाता था, फिर कितना पढ़ते है ना, कोशिश करता था। तो उस दिन से मुझे ये बहुत अंदर से तड़प थी कि हमने जो पढ़ा है इस जगत में उसे कोई हमसे पढ़ने वाला ही नहीं मिलता, ये कितना बड़ा दुख होता है शांति जी, इसको मैंने अनुभव किया था। इसलिए मैं आज भी इस बात को जो बार बार कहता हूं ना, लोगों को ये लगता है क्यों कि हमने जो ज्ञान जाना है उसको हमसे सुनने और पढ़ने वाले मिल जाएं तो हमें कितना आनंद हो सकता है, इसकी कल्पना आपको नहीं है। आचार्यों के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि जब वे शास्त्र लिखने बैठते हैं और यदि वो लिखने में एक अक्षर कम हो जाए और अर्थ न बदले तो उन्हें एक पुत्र के बराबर सुख होता है। तो मैंने कहा ये क्या, ये पुत्र का सुख क्या सुख है इस फैमिली प्लानिंग के जमाने में, और एक पुत्र के सुख के बराबर सुख होता है, और आचार्यों को एक अक्षर कम हो जाए इसमें क्या है। लेकिन उस वक्त भैया ये मुनिराज ये पीछे एक कमंडल और एक शास्त्र हाथ में लेके चलते थे, अब उसमें जितना कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक ज्ञान आ जाए वो जरूरी था ना, तब इसलिए वो एक कोशिश की जाती थी कि कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक लिखने, तो इसलिए वो एक एक अक्षर कम होने की महिमा थी। एक अक्षर कम होने की महिमा क्यों थी ये आपके ख्याल में नहीं ना। तो मैं उस वक्त कहता कि कैसा होता होगा उनको एक पुत्र की प्राप्ति का आनंद, क्योंकि जब ना मेरे पुत्र था ना वो था, कि पुत्र की प्राप्ति का आनंद कैसा होता है ना उसका पता था क्यों और ना उसका पता था। लेकिन ये मुझे सचमुच जो आपको बोल रहा हूं जनमानी सामने रखी है कि जब मैं वहां से निकल गया और मुझे राजवार्तिक भी पूरा तैयार था, तत्वासी पहले सूत्र से अंतिम सूत्र तक और अंतिम सूत्र से पहले सूत्र उल्टा भी बोल सकता था, इस तरह से जनागम मैंने पढ़ा था और तैयार था, और उस वक्त जब मुझे उसे पढ़ने वाले नहीं मिलते थे क्या, तब मुझे को जो पीड़ा होती थी समझ रहे ना, उसकी कल्पना मेरे को है, और इसलिए मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ करके 31 वर्ष की उम्र में आ गया, क्योंकि मुझे तो अमृत कुंद को पढ़ाने का शौक है, मुझे तो कुंद कुंद को पढ़ाने का शौक है, मुझको एक शकुंतला की कमर नहीं नापना है जिंदगी में, क्यों बहुत लोगों ने रिश्तेदारों ने भी बहुत नीरस्त लोगों ने मुझको बेवकूफ कहा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो उसकी कल्पना ही नहीं है क्या। मैं कहा तुमको क्या पता कि अमृतचंद्र कुंद कुंद को पढ़ाने का क्या आनंद है, अरे कुछ मिले नहीं मिले की सवाल नहीं है, कुछ दे करके भी पढ़ाने को मिले तो भी बहुत सस्ता सौदा है कि तुमसे 10,000 रुपये महीना लेंगे तो हम तुम्हें ये क्लास पढ़ाने को देंगे। और वो क्या बहुत सस्ता भैया ले लेना हो तो दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें लेने देने का क्या सवाल है। देखो ये हमारा बैठा है ना संजीव गोदा, एक विद्यार्थी मिला हमारे लिए, क्यों कुछ नहीं लेता, पढ़ाने आता है, देखो समय पे आता है, जैसे पूरा कराता है, एक पैसा नहीं लेता भाई हमसे। उस आनंद को ये समझता है, देखो लेते हैं वे बुरे हैं ये बिल्कुल नहीं है, वे भी बहुत महान हैं। ये तो संयोगों का खेल है, हवा खाके तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, पेट तो उसे भरना ही है। जब 24 घंटा इसमें अपने लगाएगा क्यों तो पेट भरने कहां जाएगा। बिल्कुल मेरी दृष्टि में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, बिना पैसा लेके पढ़ा है, पैसा देके पढ़ा है, पैसा लेके पढ़ा है, तीनों में मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। समझ जाने समझी, ये समझाया नहीं था हमने ये बात, क्यों नहीं लेता ले, हमारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं, तू महान बनने वाला नहीं है इससे कि नहीं लेता है, तो इससे महान बनेगा कि तू पढ़ाता, इसलिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्य इसको मानता हूं। मेरे से लोग कहते हैं, यही कहते हैं, नाम नहीं बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब रिटायर्ड कब हो गए, रिटायर्ड हो जाओ, समझे ना। मैं उनसे कहता हूं आपका कहना बहुत सही है, लोग 60-62 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, मैं 78 वर्ष का होने आया हूं, अब रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं, तो आपको दया आना मेरे पर बहुत स्वाभाविक है, इसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। सचमुच यही शब्द बोले मैंने, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं रिटायर्ड होकर क्या करूं। अरे लोग रिटायर्ड इसलिए होते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो करने को उन्हें समय मिले, क्यों अब मैं इससे लेता हूं जिनवाणी लिखने से पढ़ने से पढ़ाने से, क्यों एक प्रवचन भी पढ़ाना ही है ना जनता को, बोलो आप क्या चाहते हो मैं प्रवचन बंद कर दूं, आप क्या चाहते हो कि मैं लिखना बंद कर दूं जनवाणी, क्यों क्या ऐसे रिटायर करना चाहते हो मुझे। मेरा तो प्लानिंग ये है कि मैं तो गद्दी पर प्रश्न करते करते ही मरूं, अथवा सांस लिखते ही लिखते मरूं, टोडरमल जी की मौत हो गए कि बहू री लिखा तो बहू लिखा और री नहीं लिख पाया और प्राण निकल गए, ऐसा लिखते क्या लिखते लिखते या पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते समझे ना निकल जाए, झगड़ा खत्म, उसे क्या कहना देना है। मैं तो कल्पना करता हूं क्या कहूं, यदि इसे रिटायरमेंट कहते हो तो तुम 62 वर्ष में होते हो ना, मैं तो 31 वर्ष की उम्र में हो चुका हूं, क्या यदि रिटायरमेंट करके यही करना है तो मैं यही हो सका हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, अब मैं इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं, तुम्हारी तकलीफ मैं जानता हूं क्योंकि मेरे बोलते रहने से लिखते रहने से जो भयंकर वेदना आपको होती है उससे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं ये दया आप पर नहीं कर सकता, इसका मुझे बहुत बहुत दुख है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी 10-15 दिन के इन दिनों में ही किसी ने मेरे को सर्वोत्कृष्ट सलाह दी थी क्या देखो कितनी मार्मिक बातें हैं, कितना आनंद आता है इसको पढ़ने में पढ़ाने में इसको लिखने में। जब एक नया प्रमेय ख्याल में आता है ना तो अपने चित्त में कितना आनंद आता है इसकी आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप उसकी कल्पना करो, एक तरह देखो, गहराई से करो और उसके आनंद को देखो। मेरे तो पड़ते पड़ते आंखों में दर्द होने लगे, आंखों में दर्द होने लगा, होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आनंद क्यों, आनंद का जरिया क्यों नहीं झरा? देखो एक मार्मिक बात याद आई तो बताता हूं। मैं समझता था मैंने बता दी है प्रवचन में, लेकिन कल मुझे पता चला कि प्रवचन में नहीं बताई, आप व्यक्तिगत किसी को बता रहे थे। एक भाई ने मुझे बताया कि आपने व्यक्तिगत किसी को बताई थी, प्रवचन में नहीं बताई। क्या मैं गया था ना न्यूयॉर्क, लोग ना क्या क्या कल्पना करते थे, उनकी वो कल्पनाएं सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। कितने पैसा लाए ये समझते थे मैं न्यूयॉर्क पैसा लेने गया हूं। ये कल्पना मत करना है पंडित हुकुमचंद से। यदि कोई आदमी मेरे को कहे कि मैं 1 अरब रुपया देने दूंगा तुम्हें और मेरे लिए तुम इधर आ जाओ, तो ये पंडित हुकुमचंद हिलेगा नहीं और मुझे समझाने यहां आ जाओ। अभय जी साक्षी हैं, साहू अशोक कुमार जी ने भी मुझे बहुत बुलाया था जब भी उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। फिर पादमी जी ने अभय जी को मना करके अभय जी को भेजा था। मैं सेठियों के पास पैसा लेने नहीं जाता, पहले भी मैं कह चुका हूं। क्यों गए थे हिंदुस्तान में, तो आज तक किसी के पास गए नहीं। वो कैसा आत्मा है तुम्हें पता नहीं है, जिसके पास 3,000 से ज्यादा शास्त्र हैं, 20,000 से ज्यादा सीडी कैसेट हैं गुरुदेव के प्रवचन और मेरे प्रवचन, जो पिछले 30 वर्षों से 2-2 घंटे रोजाना सुनता है, 2-2, 4-4 घंटे पढ़ता है, तो तत्व की गहरी पकड़ जिस आदमी को है, वो आदमी को कैंसर हो गया है और वो मुझे याद कर रहा था, उसके लिए मैं गया था। और उसका ऐसा रिजल्ट आया कि मैंने उसकी छोटी लड़की को, बड़ी लड़की को फोन पर करते सुना कि तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, तुझे अभी देखना है तो पापा को अभी देख, देख कैसे खेल रहे हैं। दादा आ गए तो पापा की सब बीमारी गायब हो गई। देखा जितने उनके नियरेस्ट लोग थे सबने मेरे से 20-20 दफे ये बात कही है। उनका भोजन दुगना हो गया, मेरे साथ ही भोजन करते थे, दिन भर हंसते हंसते प्रसन्न चित्त इतना रहते थे कि जो उनके वो डॉक्टर थे वो कहते थे कि हम लोग तो 2000 सीसी का वो देते हैं डोज, आपने तो 2,00,000 सीसी का डोज दिया है। वे अपनी डॉक्टरी भाषा में बोलते थे। उसकी पत्नी ने मेरे से कहा कि हमने इनको कहा कि तुम्हारी मम्मी को बुला दें तो ये बिल्कुल चुप रहे। और 2-4 नाम लिए तो चुप रहे। और हमने कहा कि डॉक्टर साहब को बुला दें, बात के पूरा नहीं हो पाया कि हाँ हाँ लाओ, और फोन लगा के फटाफट घुमाया और फिर हमको पकड़ा दिया कि तुम आग्रह करो। उनकी पत्नी ने किए, बच्चों ने किए, उनने किया और फिर वो कहते बार बार कि दादा रेखा बुला रही है, रेखा बुला रही है, मतलब ये तो आप जानते हो कि मैं बुला रहा हूं, लेकिन अब रेखा भी बुला रही है, मतलब ये मत समझना कि मैं अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बुला रहा हूं। आप समझ गए ना, उस समय सार की गाथा जैसा अर्थ है उसका भी। और मैंने वहां बैठ करके भी नियम सार अनुशीलन के 30 पेज लिखे हैं, कम से कम 20 गाथाओं का पद्यानुवाद किया है। दुर्भाग्य से 2 दफे हो गई, पहले यहां करके रख गया था और वहां भी दोबारा हो गई, और कम से कम 40 कलशों का प्रज्ञानुवाद किया है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ये काम करता था, जब तक भी सो के उठ के आते नहीं थे। भाई क्या है इस पढ़ने पढ़ाने का आनंद क्या है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हम किस बात के लिए समर्पित हो सकते हैं और किस बात के लिए नहीं, खाली में है ना, किस बात के लिए समर्पित होना चाहिए और किस बात के लिए नहीं। सब हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं गए, क्यों? हिंदुस्तान में कोई आदमी ने बुलाया हमें ऐसे ऐसे काम के लिए, याद किया कभी आज तक? मैं निमंत्रण नहीं दे रहा हूं कि आप मुझे याद करना, ऐसा मैं आने वाला भी नहीं हूं, धोखे में मत रहना। जब मैं स्मारक में आया था तब भी मेरे से एक से सेठ जी ने कहा था, राजेंद्र हमने तो आपको कई बार बुलाया पर आप नहीं आए, और गोदगा जी के बुलाने पर यहां चले आए, हमारा ऐसा क्या अपराध था? राजेंद्र का नाम इसलिए लिया है कि उनको नाम मालूम है उनका, जिसने कहा था मेरे से। क्या मैंने कहा? कहा तो था आपने, लेकिन मैं आपका आशय समझ नहीं पाया। क्या सचमुच आप जैसा गोदगा जी ने बुलाया है जिस काम के लिए, और जैसा उन्होंने ये साधन जताए हैं उस काम के लिए, आपका ऐसा प्लानिंग था? मैं तो ये समझता था कि आपको अकेले कुछ सुनना है, एक आध घंटा आप मेरा अकेले सुनेंगे और 6 घंटा मुझे सुनाएंगे, इसलिए मैं आपके यहां नहीं आया। मैंने उन सेठ जी को जवाब दिया था, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, जगत के सामने नाम बताने से क्या फायदा है? यदि आप ऐसा मुझे बुलाते और मुझे आपकी वाणी से ऐसा लगता तो मैं गारंटी से आपके यहां आ जाता। समझ में आए ना? तो सचमुच ऐसा कोई बुलाएगा और मुझे लगेगा कि मेरे जाने का वहां असली लाभ होगा तो अस्पताल में पड़ा होऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। समझ नहीं आई ना आपकी में ना? और जब तक ऐसा नहीं लगेगा तुम 100 सिर के हो जाना, कितना ही नोट दिखाना, मेरा विकल्प भी हिलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ जो लोगों ने मेरे से पूछा कितना लाए, तो सचमुच बहुत दुख हुआ। कल भी मुझे विकल्प आया था कहने का, कि किसी तरह मैंने मन को रोक लिया लेकिन आज मैं नहीं रोक सका। अब वो मेरे इतने नियरेस्ट हैं, इतने अधिक हितेशी हैं, इतने अधिक मित्र हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कोई ज्यादा बोलने की कोशिश मत करें, जितना मैं बोल रहा हूं मुझे उतना ही बोलने दें। क्या इनमें आतारंग आदि को ज्ञान आदि का आश्रय तो अनेकांतिक है। अब ये भाषा कितनी विचित्र है ना, ये सामान्य जनता के लिए कितनी कठिन है। इनमें आचार आदि को ज्ञान आदि का आश्रय तत्व अनेकांतिक है, और अनेकांतिक है माने अनेकांत से इसका कोई संबंध नहीं है। अनेकांत नाम का, अनेकांतिक नाम का एक दोष है न्याय भाषा में। वो हेतुओं के जो दोष हैं कितने हैं, कितने प्रकार के हैं? 22। वो चार उनके प्रभेद 22 हैं, तो चार हैं हेत्वाभास। तो उन ये हेत्वाभास अनेकांतिक नाम का हेत्वाभास है, और इसका दूसरा नाम व्यभिचारी दोष है। मैं अभी बताऊंगा कि व्यभिचारी दोष क्या है, अनेकांतिक हेत्वाभास क्या है, वो सब बताऊंगा मैं। वैसे इसमें सब लिखा है, बताऊं कहां लिखा, निकालो। इसलिए कह रहा हूं कि अभी कल मैं नहीं बता पाऊं किसी को तो बता सके। पेज नंबर निकालो 69। अनेकांतिक हेत्वाभास का स्वरूप गाथा 265 के अनुशीलन में स्पष्ट किया ही है। अब 265 गाथा निकालो, समझ में है ना। एक भाई ने मेरे से कहा आप कैसा याद रह जाता है कि पहले आप कर रहे आज कौन सी गाथा में 17 पेज निकालो भैया। देखो इसमें लिखा है उन्हें बंध का कारण मानने पर अनेकांतिक हेत्वाभास होता है। तीसरा पैरा, जो हेतु पक्ष और विपक्ष दोनों में पाया जाता है उसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। इस प्रकार इस हेतु को विचारु हेतु भी कहते हैं। नीचे समझाया, विस्तार से समझ लेना। अभी तो मैं समझा देता हूं कि ये क्या है, व्यभिचारी दोष क्या है, अनेकांतिक हित्वाभास क्या है, अनेकांतिक क्या है। ये अपना एक उदाहरण है प्रसिद्ध आचार्यों का, पर्वतो यम अग्निमान धूमवत्वात्, सुना होगा कभी के नहीं। हमको जो न्यायशास्त्र पढ़ाते थे तब उन्होंने पढ़ाते थे पर्वतो यम अग्निमान धूमवत्वात् यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा यथा महानसा, यत्र तत्र नास्ति अग्नि तत्र तत्र नास्ति धूमा यथा तड़ागा, ये पढ़ाते थे। तो मुझे उस वक्त विकल्प आता था कि इनकी जिंदगी यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा इसमें निकल गई। ऐसा लगता था कि देर तक निकल गई कि इनकी जिंदगी हर साल यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इसको ही पढ़ाते पढ़ाते निकल गई। लेकिन आज उसकी मुझे महिमा आती है क्या कि वो भी कितने सौभाग्य की बात है। देखो अभी समझना क्या है, इस पर्वत पर अग्नि है, हिंदी में बोलता हूं, संस्कृत नहीं बोलता, हिंदी में, क्योंकि इस ऊपर हमें धुआं दिखाई दे रहा है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे रसोई घर, ठीक है। और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं नहीं होता है, जैसे तालाब। ख्याल में कि क्या करें। अब देखो क्या चीजें हैं, हेतु का दोष है अनेकांतिक। तो जो हेतु पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे पर विपक्ष में ना रहे, वो असली सही हेतु है। और पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे तो उसे अनेकांतिक दोष कहते हैं। अब जरा समझ रहे हैं इसको, इसी पे समझ लेते हैं। अब हेतु क्या है, धुआं। पक्ष क्या है, पर्वत। साध्य क्या है, अग्नि। माने हमें पर्वत पर अग्नि है ये सिद्ध करना है। तो जहां साध्य होता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं, और जो सिद्ध करना है उसे साध्य कहते हैं, और जिस साधन से सिद्ध करते हैं उसे साधन कहते, हेतु कहते हैं। अब हमें यहां क्या सिद्ध करना है कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन मुक्ति का, बंधन से, बंधन के नाश का हेतु है या नहीं। कौन सा ये व्यवहार सम्यक दर्शन, तो वो आचार्य कहते नहीं है, क्योंकि इसमें अनेकांतिक नामक दोष आता है। अब आप समझ, अभी वहां कह रहे थे ना, वहां पर्वत था पक्ष, ध्यान से सुनना, पर्वत क्या था और रसोई घर था सपक्ष, क्योंकि पर्वत पे भी अग्नि है और रसोई में भी अग्नि होती है, और तालाब था विपक्ष, क्योंकि तालाब में अग्नि नहीं हो सकती है, पानी में बुझ जाएगी। तो तीन हो गए, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। तो अग्नि धुआं नाम का हेतु वो सही हेतु है। क्यों? कि वो पर्वत पर भी है और रसोई घर में भी है और तालाब में नहीं है। उस पर भी बहुत बहस हुई आचार्यों ने कि कैसे नहीं है। हमने तो सुबह उठ के देखते हैं ना, तो तालाब में से हमें बहुत धुआं निकलता दिखाई देता है। और अभी आएगा ना दिसंबर का महीना, फिर देखना तो तुम्हारे मुंह में से धुआं निकलेगा। यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि। तो ये बस समझ लेना कि तुम्हारे पेट में अग्नि है, वैसे पेट में भी जसाग्नि होती है। क्या जैसे जैसी बहस की है वो भाप निकलती है, तो उनने कहा बेटा वो धुआं नहीं है, वो भाप है। तो हमें तो धुआं सा लगता है कि तुम चश्मा लगवाओ। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अपने आंख का इलाज कराना पड़ेगा। अच्छा गागड्डा धुआं हो वो देखो, तुम्हें भ्रम ऐसा क्यों? हमारे जो हेतु दिया है वो धुएं का दिया है, और यदि वो वहां धुआं निकल जाए तालाब में तो हमारा हेतु गड़बड़ हो सकता है। अब तुम भाप को धुआं समझ लो तो उसमें हमारा दोष नहीं है, वो तुम्हारी आंख का दोष है। ये तुम्हें समझदारी से काम करना चाहिए, आप समझे ना। तो वो कहते ये धूमवत्वात, ऐसे बोले पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात, उत्वात लगता है ना, वो सब हेतु होती है। व्याकरण का नियम है हेत्वर्थे पंचमी, जैसे हेतु के अर्थ में तृतीया होती है, लेकिन यहां पर न्याय शास्त्र में पंचमी का ज्यादा प्रयोग होती है हेतु के अर्थ में। देखो मुझे बिल्कुल समय नहीं का ख्याल नहीं है, कितना बजे मैंने शुरू किया था क्या किया था, तो चलाता हूं। देखो क्या कह रहे हम, अब समझ में तो आ रहा ना, ये थोड़ा न्याय शास्त्र पढ़ा रहा हूं, थोड़ा व्याकरण भी बीच में आ गया है। हेत्वर्थ है पंचमी, कि वो पंचमी ये धुआं वाला होने से, ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं वाला है। जैसे रसोई घर वो धुआं वाली होती है तो अग्नि वाली होती है, और जैसे जो जो अग्नि वाले नहीं होते वे धुआं वाले भी नहीं होते। जैसे तालाब उसमें अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है, समझ गए। अब ये तो हमने अनेकांतक हेतु समझ लिया कि पक्ष में भी हो, सपक्ष में भी हो और विपक्ष में नहीं हो तो अनेकांतिक दोष से रहित है, और सब पक्ष में भी हो विपक्ष में भी हो तो वो अनेकांतिक दोष से रहित है। अब समझना, अपन को व्यवहार मोक्ष मार्ग पे और निश्चय मोक्ष मार्ग पे घटित करना है। अब मोक्ष है साध्य, आत्मा है पक्ष, समझ गए ना। और वो क्या व्यवहार सम्यक दर्शन है हेतु, अथवा निश्चय सम्यक दर्शन है हेतु। अब तीनों है ना, यहां व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र, तो इसको मोक्ष मार्ग भी कह सकते, तुम तीनों को समझ लेना है ना, ये ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन नामक हेतु है, वो पक्ष माने उनको भी होता है जो मोक्ष चले जाते हैं, जिन्हें मोक्ष हो गया उन्हें भी होता है, और जिनको वो व्यवहार हेतु व्यवहार संबंध दर्शन होता है वे ऐसे भी होते हैं कि उन्हें कभी मोक्ष नहीं हो, क्योंकि वो अभव्यों को भी हो जाता है। इसलिए विपक्ष में चला गया, मैंने मोक्ष जाने वालों में भी है और कभी नहीं जाने वालों को भी हो जाता है। इसलिए ये अनेकांतिक हेतु है, और इसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं, और इसको व्यभिचारी नामक दोष भी कहते हैं। अब व्यभिचारी कहते ही तुम्हारे दिमाग में मालूम कहा जाता है कि व्यभिचारी व्यभिचारी कहें तो अच्छा नहीं लगता है, ये तो बहुत गंदा लगता है। हम तो समझते थे आदमियों में औरतों में ही व्यभिचारी होते हैं, ये तो इस हेतुओं में भी व्यभिचारी होते हैं। तो इसको व्यभिचारी नामक दोष क्यों है, नाम इसका नाम क्यों है? इसलिए है ना कि ये जो पति स्वपति से भी रमण करे और परपति से भी रमण करे, पक्ष में भी रमण करे और विपक्ष में भी रमण करे, तो उसको व्यभिचारी कहते हैं ना। तो ये हेतु व्यवहार घबराना नहीं, व्यवहार नामक सम्यक दर्शन ये भव्यों को भी होता है और अभव्यों को भी हो जाता है, मोक्ष जाने वालों को भी होता है, मोक्ष नहीं जाने वाले उनको भी हो जाता है। अगर व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, व्यवहार सम्यक ज्ञान भी और व्यवहार सम्यक प्राप्ति भी, क्यों कि उनका जो शास्त्र ज्ञान होता है उसके हेतु भी शास्त्र हो जाते हैं, आश्रय आश्रय, समझ गए ना। और व्यवहार सम्यक होता है उनके हेतु माने आश्रय रूप हेतु ये नौ तत्व हो जाते हैं, और जिनके व्यवहार सम्यक चरित्र होता है उनके छह काय के जीव उनके रक्षा भाव के निमित्त हो जाते हैं, समझे ना। इसलिए ये हेतु अनेकांतिक हेत्वाभास से दूषित है और व्यभिचार नामक दोष से दूषित है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है आपको ये समझाने के लिए कि अब जब हम कभी ये बोलें कि इसमें अनेकांतिक है, ये हेतु अनेकांतिक है, तो आपको ये समझ में पूरा आ जाना चाहिए, ये दिमाग में पूरा घूम जाना चाहिए। क्यों आप कहो तो मैं कल पूछ लूंगा, पढ़ना देखना कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम पढ़ भी सकते हो इसमें, देख भी सकते हो, और समझ में नहीं आए तो मुझसे नहीं पूछ सकते। लेकिन मेरे यहां पर इतने विद्यार्थी हैं उनमें कम से कम तुम 25 लोगों ऐसे होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं, अभय कुमार जी से पूछ सकते हैं, शांति कुमार पाटिल से पूछ सकते हैं, फिर भी बैठे हैं ये सब बैठे, बहुत बैठे, अभी उनके नाम ज्यादा कि मेरे नाम के भी आते, क्या कह रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इनको याद कर लूं, मैं कहा भगवान के नाम तो कभी याद नहीं किए जिसके रह गए सो रह गए, इनके भी क्या याद करना, जिनके रह जाएंगे तो रह जाएंगे और जिनके नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, चलेगा क्या फर्क पड़ना है, समझ गया ना। लेकिन ऐसे कम से कम 50 आदमी भी यहां हो सकते हैं मेरे विद्यार्थियों में कि वो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, उन्हें परेशान कर जरूर करना आप जानते हैं वो आचार्यों में होते हैं, एक आचार्य होते हैं और एक निर्यापकाचार्य होते हैं, सुना कभी निर्यालाचार्य निर्यापकाचार्य कौन कौन ग्रंथाचार्य, उन्होंने कितने कितने प्रकार के आचार्य होते हैं। इन निर्यापकाचार्य क्या होते हैं कभी सोचा, क्यों जानते हो, हम तो आचार्य को ही नहीं जानते, निर्यापकाचार्य की तुम क्या जानते। आचार्य महाराज होते हैं, अब उनने 500 लोगों को दीक्षा दे दी, अब रोजीना आहार को जाएंगे और उनसे गलतियां होंगी और वो उनको जाकर के आचार्य से पूछना है कि मेरे से ये गलती होगी प्रायश्चित दो, अब 500 से रोजीना आएंगे तो आचार्य के क्या होगा। तो वे कुछ निर्यापकाचार्य बना के रखते हैं अपने जो योग्य शिष्य होते हैं ना, जो उसमें माहिर होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम इनके पास आगे बता दिया करना और ये तुम्हें बता देंगे क्या प्रायश्चित लेना। तो जैसे तुमने मेरे से कही ऐसी समझना, तो ऐसे जो होते हैं भाई जी उनको निर्यापकाचार्य कहते हैं। अब वो संघ के हिसाब से होते हैं, वो 700 मुनियों का संघ होगा तो उसमें कितने 70 निर्यापकाचार्य हो सकते हैं, समझ रहे ना। क्यों क्योंकि 10 से ज्यादा तो कोई कोई निपटा नहीं सकता है ना, फिर वो अपनी समय कब करेगा, और वे भी लेन लगा के खड़े रहेंगे, वो भी राशन की दुकान हो जाएगी, क्यों समझ में आया सुरेश जी। ये तो कल बता दोगे कि निर्यापकाचार्य किसे कहते हैं, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि जो आने के बाद मुनिराज लोग जिनसे अपना दोस्त पूछ के प्रायश्चित लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो बताना पड़ेगा, समझ जाए ना। मैं निर्यापकाचार्य बोल दूंगा तो फिर आप बता दोगे लेकिन आपको वो निर्यापकाचार्य शब्द याद रहेगा कि नहीं रहेगा इसका मुझे पूरा भरोसा نہیں ہے. دیکھو اب اپنے یہیں پڑھ رہے تھے نا, آتارانگادی کو جان آدی کا آشریتو انیکانتک ہے. آچارانگ آچارانگ کو پڑھا, میں نے ستشاستروں کو پڑھا تو وہ جان کے آشرے ہوئے, تو کہتے ہیں کہ وہ جانی کو بھی ہو جاتے ہیں اور اجانی کو بھی. وہ جو شاستر ہیں ایسا پرتبندھ نہیں ہے کہ جانی ہی پڑھیں, اسے اجانی بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ سمجھے نا, تو پکش و وپکش دونوں میں چلے جاتے ہیں وہ. انیکانتک ہیتوا بھاس ہے, ویچار نامک دوش سے سنیوکت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا اتنی بات, کٹھن تو نہیں ہے. اس لیے ویوہار نئے پرتیشدھ ہے موکش کے مارگ میں, کیونکہ تم اس کے بھروسے کرو گے تو سب یہ بھاؤ تل جائیں گے. کون ودرو لیں گی, بھاؤ لیں گی, سب ایک بھاؤ تل جائیں گے کہ نہیں. نشید کرنے یوگ ہے اور نشچے نئے ویوہار کرنے کا پرتیشدھک ہے. کیوں کہ شدھاتما کو گیانادی کا آشرت ایکانتک ہے. ایکانتک ہے مانے وہ گارنٹی سے ہے, کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. یہ ایکانتک کا عرض ایسا ہے. اب تم وہی سب شبدوں کا عرض الگ ہوتا ہے, تو اس کے انیکانتک ہے اور نشچے کے ایکانتک ہے, ہوتا ہی ہے. نشچے موکش مارگ پہ چلو گے تو موکش ملے گا ہی ملے گا, اس لیے یہ ایکانتک ہے. تاتپر یہ ہے کہ شدھاتما کو گیانادی کے آشرت میں انیکانتک ہیتوابھاس نہیں ہے, ویچار نامک دوش نہیں ہے, کیونکہ شدھاتما کے آشرے سے گیان درشن چارتر ہوتے ہیں. اب یہ لکھا نا, اب اسی بات کو ہیتو پوروک وستار سے سمجھاتے ہیں. اوپر کیا لکھا, یہ کائے کا ارتھ ہے. اب اسی بات کو ہیتو پوروک وستار سے سمجھاتے ہیں. ایک سنسکرت ٹیکا میں دیکھو کون سے شبد کا ارتھ ہے, میرے ودیارتھی مت بولنا, باقی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. جیسے میں پہلے ہی دن میں بتایا تھا, پہلے پرچن میں پہلے واقع میں بتایا تھا, نیا ساس کے کچھ شبد نکی ہیں. جہاں ننو لکھا ہے سمجھ لینا شنکاکار ہے. کیوں؟ جہاں تتھائی لکھا ہے اس کا ارتھ ہوتا اب اسی بات کو وستار سے سمجھاتے ہیں. یہ تتھائی اوپر لکھا ہے تتھائی, پرماننٹ شبد ہے, آ جائے گا فٹافٹ. تتھائی جو بات ہم نے سنکھیپ میں کہہ دی ہے اب اسی بات کو وستار سے سمجھاتے ہیں. وستار سے مانے ادھارن دے کے سمجھائیں گے, ترک اور یکتیاں دے دے کے سمجھائیں گے, اور انیک ترک اور یکتیاں دیں گے. مطلب جو سنکھپت روچی والے شسیہ ہیں وہ تو اتنے سے ہی سمجھ جائیں گے, اب جو نہیں سمجھے ہوں ان کے لیے اب وستار سے سمجھانے کی بات اس میں وستار سے آئے گی, وہ اپن کل پڑھیں گے.